Santa Planeta de la Marca. इस पवित्र त्यौहार की हार्दिक बधाई हो। ये त्यौहार आप सबको शुभ मंगलमय हो। परंतु इस त्यौहार का समझनी चाहिए पर हमारे भीतर में जो इस समय प्रेम उमड़ रहा है उसकी वास्तविकता का ज्ञान होगा। चारों लोग आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और प्रकृति भी मुस्कुरा रही है और उसका उसकी सुंदरता चारों ओर फैली हुई है। वसंत का समय एवं वर्षा ऋतु का समय महापुरुषों संतों कलाकारों प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण समय है। वास्तव में ये समय सबको आकर्षित करता है। तो संक्षिप्त में जैसे अभी बहन पढ़ रही थी, आज सरस्वती जी की पूजा करते हैं। क्यों? अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि जो मंत्र सिद्धि करते हैं या अन्न सिद्धि करते हैं वो पहले सरस्वती जी ज्ञान सुंदरता करा की प्रतीक है। उनका एक ही अंग लेते हैं, वे बिना वादनी है। क्या अर्थ है इसका? वीणा के सात स्वर होते हैं। यदि सातों स्वरों में संयोग है तो एक मधुर संगीत उत्पन्न होगा। बिना संयोग के मधुरता नहीं आएगी, संगीत नहीं आएगा, रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। हम कहते हैं हमारे भीतर में अशांति है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, आनंद की अनुभूति नहीं है। उसका कारण क्या है? कि हमारे भीतर की जो वीणा है वो हमारे बुद्धि के अधीन है। भिन्न भिन्न स्वर जो है वो अपना ही राग छेड़े हुए हैं। जब तक सातों स्वरों में संयोग नहीं होगा तब तक मधुरता नहीं आएगी। मधुरता का दूसरा अर्थ है आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। सरस्वती जी हमें ज्ञान देती हैं। ज्ञान किस चीज का? पुस्तकों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान प्रदान करती हैं। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा किसी के भीतर में शांति आ ही नहीं सकती। संसार के पदार्थ भले कितने आपको मिलते, मकान मिल जाए, कोठी मिल जाए, गाड़ियां मिल जाए, परिवार अच्छा मिल जाए, परंतु वो अस्थाई सुख होता है, वो आनंद रूप नहीं होता। यदि उनमें आनंद होता तो महापुरुष तो पहले राजा अधिराज होते थे, वो घर बार छोड़कर क्यों चले जाते? वो किस आनंद की खोज में घर बार छोड़ जाते थे? सब संपत्ति वगैरह को त्याग करके सन्यासी हो जाते, किसको ढूंढते थे वो? इसके लिए उनके मन में आकर्षण उत्पन्न होता ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा की, परमात्मा के दर्शन का बदल है, परमात्मा की अनुभूति के लिए। तो तो हमें कोशिश करना चाहिए आज के दिन जो हमें प्रेरणा मिल रही है उस प्रेरणा को स्वीकार करें। प्रेरणा का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने विचारों को, मन को, बुद्धि को चंचल बनाए। चंचलता का त्याग करें आज के दिन। आपको मंत्र सिद्धि के लिए पहले सरस्वती जी पूजा क्यों करते हैं? ताकि हमारी जितनी वृत्ति है वो स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, हमारे वश में आ जाए, एकाग्रता हो जाएगी, तब हम मंत्र सिद्धि या आत्मा की अनुभूति सिद्ध कैसे करने। तो हमें आप सबको भी आज के दिन सरस्वती जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि हम भी अपने भीतर में एक संगीत उत्पन्न करें। एक तो संगीत ये है कि जो भीतर में उथल पुथल हो रही है उससे हम मुक्त हो पाए। अब जैसे कभी 10-20-50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, बोलने लगते हैं, तो एक पोजेंसी हो जाती है, एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते, एक दूसरे को हम समझ नहीं सकते। जब तक शांत हम समझ नहीं पाएंगे, इसी प्रकार हमारे भीतर में भी उथल पुथल होगा। ईश्वर की समीपता नहीं हो सकती जब तक भीतर में उठा को कर गया। विचार हमारे इतने उठे हैं भीतर में, हम कोशिश करते हैं परंतु विचार हमारे वश में आते हैं। समस्या आज की नहीं है, आपकाल की है। अर्जुन भी भगवान से कहता है, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं आता है, अर्थात मैं अपने विचारों को काबू नहीं कर पाता। तो भगवान कहते हैं या आप सच कहते हो, ये समस्या इतनी सरल नहीं है। वायु आकाश भले ही हाथ में काबू, मुट्ठी में काबू आ जाए, काबू मन काबू में नहीं आता। परंतु सरस्वती जी कह रही हैं कि अपने आप को संगीतज्ञ बनाइए, मन स्थिर हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा। वीणा में या दूसरे उपकरण जो होते हैं गाने के लिए, सात स्वरों में उनके गुण क्या है? निचला सा जो है वह धीमी आवाज, फिर ऊपर चलते हैं पा पर तो तेजी सी आ जाती है, और ऊपर ले बड़े सा पर चलते हैं तो बहुत तेज होता है। आनंद किस्मत गाता है। जब गाना गाने वाला या वीणा बजाने वाला ऊपर वाले सा से नीचे स्वरों में आता हुआ अपना सारा जो अपनी कला है नीचे वाले सा में समाप्त कर, वो शब्द रहत जो शब्द है, साउंडलेस साउंड जो है, उसमें आनंद है, उसमें ज्ञान है। हमें भी उसी प्रकार वीणा बजाना सीखना है, अपने भीतर की वीणा बजाना सीखना है। पहले विस्तार करेंगे आवाज का जितना हो सकता है, तीव्र अति तीव्र में चले जाएंगे, फिर उसको मध्यम में ला कर नीचे ला के स्वर को स्वर में लय कर देना। उसी में सुनने वाले भी, श्रोता भी मुग्ध हो जाते हैं और बजाने वाला भी मुग्ध हो जाता है। वही आनंद का क्षण होता है, वही प्राप्ति का क्षण होता है। साउंडलेस साउंड, जहाँ आवाज नहीं है वहां आनंद उत्पन्न होता है। अनहद इस संगीत से निकला है। जब तक मन में शांति नहीं होगी अनहद कहां से सुना जाएगा? जिस शब्द की इतनी महिमा है शास्त्रों में, वेदों में तथा अन्य महापुरुषों की वाणी में, क्रिश्चियन जी में कहते हैं इस आवाज को कब सुन सकता है व्यक्ति? जब बिल्कुल स्टिलनेस होती है, स्टिल स्मॉल साउंड, तो हमें आज के दिन सीखना है कि संगीत के द्वारा हम अपने भीतर में कैसे स्थिरता स्थापित कर सकते, उस मौन को आत्मिक मौन को कैसे स्थापित कर सकते। आत्मिक मौन तभी होता है जब तक सब अन्य आवाजें बंद हो जाती है या तो साउंड में कदम आगे लय हो जाते हैं। ये मौन नहीं है जो हम करते हैं। मौन का मतलब ये है कि मन जो शोर मचाने वाला है, आवाजें उठाने वाला है, इसको अपने उद्गम स्थान में ले कर मन को आत्मा के स्थान पर ले जाकर साधना के साधना द्वारा उसको जाके ले कर, और उसका स्थान भी वही है, वो भी आत्मा का ही रूप। जब तक आत्मा के स्थान पर नहीं जाएंगे और वहां अपना ठहरेंगे नहीं, तब तक शांति नहीं मिल सकती। भले ही जोर लगाइए, जितने मर्जी गाना गा लीजिए, जो मर्जी राग गा लीजिए, कोई शांति मिलेगी साउंड में मेरा वाचनी सरस्वती जी ने जो बिना छेड़ी पूरे साउंडलेस साउंड में आके इस नाद रहत नाद में आके खत्म, और वो जिसकी आवाज नहीं है, आवाज रहत आवाज बिना जो नाद है वो अनद है, उसमें शांत, उस आत्मा की गूंज में शांत। शेष जितना भी हम कर रहे हैं प्रयास है, प्रयास का तो वास्तव में अपना लक्ष्य समझना चाहिए। हम ये भी चाहे कि भीतर में उथल पुथल भी हो, संसार में भी रहे, सब बातों में भी फंसे, सब आनंद भी ले, आनंद का मतलब है संसार के सुख भी भोगे, आत्मिक आनंद की भी प्राप्ति करें, ये मूर्खों की बात है। तो जब हम मौन की बात करते हैं, मौन का मतलब है आत्मिक मौन। शास्त्रों का सार यही है, आत्मिक मौन में प्रवेश कर। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं, कोई ऐसा शास्त्र नहीं, कोई फकीर नहीं हुआ, कोई साधु नहीं हुआ जिसने मौन का महत्व, मौन के महत्व पर नहीं कहा। ये अच्छा लगता है संगीत, भजन आदि बहुत बोलते हैं, परंतु इसकी सीमा होनी चाहिए। ये अच्छा है, बिना भक्ति के उपासना नहीं हो सकती। उपासना तो मतलब है ईश्वर के चरणों में पहुंचने के लिए अपना स्थान आसन नजदीक बनाना, उसके बगैर नहीं हम पहुंच सकते, उसका भी महत्व है। परंतु उसी पे ही हम मस्त रहे तो थोड़ी सी हमारी भूल। मेरी घर में प्रार्थना है सब भाइयों से कि गंभीरता को हर बात की सीमा होती, सीमा में अनुशासन रहे। हम सब भाई लोग दूर से आए हैं, आप खर्चा भी किया हर व्यक्ति ने, तो लक्ष्य तो सामने होना चाहिए। जब व्यक्ति यहाँ से जाए तो कुछ प्रसाद तो लेकर जाएगा, तो प्रसाद किस बात का हो। प्रसाद के अर्थ ये स्थूल प्रसाद नहीं है, प्रसाद के अर्थ है ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा का दूसरा नाम है अमृत, और साधारण भाषा में हम उसको कहते हैं नाम, नाम है। तो जब हम यहाँ से वापस लौटे तो नाम रूपी प्रसाद को अपने साथ लेकर जाए, आत्मा रूपी प्रसाद को साथ लेकर जाए। उस प्रसाद का क्या अर्थ है, वो प्रसाद जाके बांटना होता घर जाकर। अपना आपका शरीर सत्संग में आकर इतना पारसमय हो जाए, संवेदनाशील हो जाए, जो यहाँ से प्राप्ति हुई है आप घर ले जाएं, वहां बोलने की जरूरत नहीं है, अपने व्यवहार से जहां भी आप बैठेंगे, जो व्यक्ति आपके पास बैठेगा उसका भी मन एकाग्र हो जाएगा। ये हद दो चार दिन बैठती है प्रत्येक व्यक्ति की, यदि वो अपने इस प्रसाद के संभालने की कोशिश करे तो। यदि बातचीतों में ही, खाने पीने में ही, जबान के रस में ही समय गुजार देगा तो वो तीर्थ गया यहाँ गया कोई नहीं। सत्संग में आकर गंभीर रहे, प्रभु की जो वृत्ति हो रही है, कृपा वृत्ति हो रही है, अमृत मिल रहा है, नाम मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, उसको ग्रहण करना चाहिए। उस प्रसाद को जब आप ग्रहण करेंगे और वो जो आनंद आएगा आप कंट्रोल भी करना चाहेंगे, नहीं होगा, आपके व्यवहार से मुस्कुराहट जाएगी, आंखों में एक नूर होगा, आपकी वाणी में एक मिठास होगी, आपके व्यवहार में एक सरलता होगी। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मेरे शब्दों को बुरा नहीं बनाएंगे, आनंद के भंडार को एकत्र करें अपने भीतर। और इसमें कंजूसी की जाती है, लोग कहते हैं नजर न लग जाए, वो यही होता है। साधना को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, अनमोल जो मोती होते हैं उसकी प्रदर्शनी की जाती है। मैं भी बोल जाता हूँ, मेरी भी गलती है, हमारे यहाँ बोलना अधिक बोलने की इजाजत नहीं है, परंतु मैं भी बोलता हूँ कि वो हमारे भूलते जा रहे हैं तो मुझे कुछ गुस्ताखी करनी पड़ती है, इसके लिए मैं हर जोर से माफी मांगता हूँ। बाकी जितने सामान हैं वो ठीक है, समाज में रहकर सामाजिक कार्य करने होते, परंतु ये आत्म केंद्र है, ये धीरे धीरे हमें शब्दों से मुक्त होना है, विचारों से मुक्त होना है, भीतर की वीणा बजानी है और सुननी है। सरस्वती जी भीतर बैठी है, उस सौम्य स्वर को सुनना है, वो भी एक अंतिम अवलंबन है। उसका सहारा लेते हुए हमें अपने पितर को चरणों में पाना है। अंतिम चरण जो है वो पितर है, हमारा परमात्मा वो भीतर में आत्मा के रूप में बैठा है और बाहर के भीतर बाहर एक ही है। आप लोगों की इच्छा हो तो 10 मिनट देर नहीं हो जाएगी, चाहे जरा लेट से पी लीजिएगा 10 मिनट। जो महापुरुषों ने हमें साधन बदलाया हुआ है, जिन महापुरुषों की याद में ये भंडारा कर रहे हैं, उनकी स्मृति में उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। आप सब मुझे इजाजत दें तो मैं 10 मिनट के लिए फोन साधना में बैठूं।